Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, my name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Amrish Saxena.
Namaskar. Aarthik khabron ke karyakram Market Mantra ke taaza ank mein aapka swagat hai. Aadhe ghante ke is karyakram mein hamesha ki tarah hum desh videsh ki aarthik gatividhiyon ke saath saath share bazaar ki halchal par nazar dalenge aur saath hi pramukh khabron par charcha bhi karenge. Aaj charcha ke liye hamare saath studio mein aamantrit hain aarthik vishleshak उदयन रे. उदयन नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
धन्यवाद अमरीश जी.
सबसे पहले अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ है निश्चित कुमार.
हेडलाइंस: इंडिया अ शाइनिंग एग्जाम्पल बिफोर द वर्ल्ड बाय इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज फॉर पॉवर्टी एलिविएशन हंगर इरेडिकेशन एंड ऑफरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू यूथ सेज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू. Outgoing RBI Governor Shaktikant Das highlights challenges that lie before the RBI, including restoration of inflation control, adapting to the changing global order, and addressing cybersecurity risks. Domestic benchmark indices end on the flat note. Sensex settles at 81,510. Nifty closes at 24,610. And global crude oil prices slip. Brent crude trades at $71.86 per barrel.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत ने गरीबी में कमी, भूख उन्मूलन और युवाओं को समान अवसर प्रदान करके विश्व के सामने एक बड़ा उदाहरण पेश किया है. रिजर्व बैंक के निवर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण, बदलती विश्व व्यवस्था के प्रति अनुकूलन और साइबर सुरक्षा के खतरे समेत आरबीआई के सामने अनेक चुनौतियां हैं. घरेलू शेयर बाजार आज स्थिर रहे. सेंसेक्स 81,510 और निफ्टी 24,610 अंकों पर बंद हुआ. और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के दाम गिरे. ब्रेंट क्रूड $71.86 पर कारोबार कर रहा था. और आज की पहली खबर: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत ने गरीबी और भुखमरी को समाप्त करने तथा युवाओं को समान अवसर प्रदान करने के लिए नीतियां लागू करके दुनिया के सामने उदाहरण पेश किया है. उन्होंने कहा कि सभी के अधिकारों और गरिमा की सुरक्षा करने वाले समान डिजिटल वातावरण को सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया. मानवाधिकार दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ओर से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि साइबर अपराध और जलवायु परिवर्तन मानवाधिकारों के लिए नई चुनौतियां हैं. उन्होंने कहा कि डिजिटल युग परिवर्तनकारी है, लेकिन इससे साइबर बुलिंग, डीप फेक, गोपनीयता संबंधी चिंताएं और गलत सूचना के प्रसार जैसे मुद्दे भी सामने आए हैं. उदयन, आप क्या कहेंगे? बहुत ही महत्वपूर्ण खबर राष्ट्रपति जी ने जो कहा है कि किस तरह से भारत ने गरीबी का उन्मूलन और भुखमरी के उन्मूलन को लेकर और जो समान अवसर प्रदान करने की जो नीतियां बनाई हैं वो दुनिया में बिल्कुल अलग तरह का प्रयास है और सारी दुनिया भारत के इन प्रयासों की सराहना करती है.
देखिए, बिल्कुल जितने जैसे आंकड़े हमारे इकोनॉमिक सर्वे में निकले हैं कि एक अवधि में तकरीबन 45 करोड़ भारतीयों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जिसे कहा जाता है उससे वहां से उन्मूलन किया गया है. इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत ही आर्थिक रूप से सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, पर एक जो एक अनस्पोकन वायलेंस जो होता है, जो गरीबी से आपके पास आपके ऊपर होता है, वो एक तरीके से मानव अधिकारों का हनन ही है एक तरीके से. तो वो उससे हम आगे बढ़ पाए पाए हैं। और जो राष्ट्रपति जी ने ये कंटेम्प्रेरी जो इश्यूज हैं, मुद्दे हैं, जैसे साइबर बुलिंग, डीप फेक वगैरह जो है, प्राइवेसी से जुड़ी हुई बातें हैं, ये भी अब क्योंकि भारतीय इंक्रीजिंगली डिजिटल प्रयोग कर रहे हैं, तो मोबाइल फोन्स में का प्रयोग कर रहे हैं, इससे एक इनके नए आयाम, नए फ्रंटियर्स खुलते चले गए हैं और वहां पे भी अधिकारों की रक्षा का,
जैसे यूपीआई की अगर हम बात करें, अगर डिजिटल क्षेत्र में, तो जो बराबरी की बात है तो सभी को एक ही तरह के अवसर हैं और सभी लोग आर्थिक रूप से उतना आगे बढ़ सकते हैं।
जी, और यहाँ पे एक कहना बहुत इम्पोर्टेंट होगा, महत्वपूर्ण होगा, कि जब हम बराबरी के बारे में बात करते हैं तो हक की बराबरी की बात हो रही है, अपॉर्चुनिटीज जो हैं उनकी बराबरी की बात कर रहे हैं, ये कुछ और जो तंत्र है उनसे अलग है, जहां पे सबको बाय डेफिनेशन अलग हर तरह से किया जा रहा है। यहां पे ये बताया जा रहा है कि आप अपनी मेहनत से आपको वो मौके मिले और उस मौके से आप आगे बढ़ें, और उसमें अगर जो अंतर है वो आपके हुनर, आपके मेहनत की वजह से हो, ना कि कुछ और कारणों की वजह से।
जी, वो स्किल एम्पावरमेंट।
जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
And moving on to the next story, the outgoing Reserve Bank of India Governor Shaktikant Das has expressed the confidence that under the able leadership of the incoming Governor Sanjay Malhotra, the Reserve Bank will effectively tackle any challenges that lie ahead. Addressing a press conference in Mumbai, Dr. Das reflected on his tenure as the RBI Governor and highlighted the principles he adhered to throughout his time in office. He noted that the RBI adopted a wide consultative approach, holding direct meetings with stakeholders, and praised the RBI for its excellent teamwork during his tenure, particularly during the COVID-19 pandemic. Mr. Das highlighted several challenges facing the Reserve Bank of India, including the restoration of inflation control, adapting to the changing global order, and addressing cybersecurity risks and associated threats, which he described as a continuing task with new challenges emerging daily. He also mentioned that during his tenure, the RBI focused on harnessing the benefits of new technologies, citing the establishment of the RBI Innovation Hub, the Central Bank Digital Currency Pilot Project, and the ULI and the UPI systems. Mr. Das described financial inclusion as a significant challenge for the RBI and reiterated his confidence that the institution will continue to address these challenges effectively. Now, Udayan, almost 6 long years for the outgoing Reserve Bank of India Governor, Mr. Das, in which he also saw many upheavals, particularly the COVID-19, as was mentioned in his statement. How do you see his tenure? That is one. And he talks about the RBI Innovation Hub and the Central Bank Digital Currency Pilot Project. This is very important. I guess this is going to be the future in the coming days. ULI, UPI, of course, we know it has been, come up really big. Every day we have seen this thing happening. So both the questions are very important. How do you see this?
Yeah, Nishit, it goes without saying, more that Indian economy gets integrated to the world, more there are inflows and more there are outflows, we get more, our activities are get more in sync with those of global financial order and even physical business activity. So if there's a make in India where we are trying to make it, we become part of global supply chain, there's a corresponding change that's happening in our financial systems. So whether it's trade finance, the supply chain finance, and regulating them, how do you make sure that there are enough institutions which are providing credit, access to banking and other services. So that is happening on a dynamic basis. The threats are also, as we more digital use is happening, so those threats are coming in, and mitigation, now. So during this tenure only things like blockchain came in, which makes things more secure. So all those things are happening, and even as you're doing that, you also have to be in line with other central banks, you know. So how are they doing? You have to make sure, because, you know, it's like an orchestra, Nishit. So if the advanced economies, they are following a particular financial discipline or procedure, you also have to be in line. And whatever you're following, you would want them to also follow. So if you are using UPI, you would be making, try to push UPI so that they also follow it, and things become easier for Indian businesses and Indian individuals. So it has become, and if you quickly look at the 30 odd years of all the central bank governors, they actually ended up confronting very formidable challenges. And this is something which I think very few people will contest, if I were to say that almost all our central bank governors have been very distinguished, and they've done a very good job. And it's not self-congratulations. You just have to type on the internet and see how many international awards the current RBI governor got.
One very interesting point, Udayan, we all missed, was Mr. Shaktikant Das was also the revenue secretary when he was appointed as the new RBI governor in 2018, and now Sanjay Malhotra as well, the incumbent governor, he is also currently the revenue secretary.
Well, Nishit, that's part of a whole line that we have been having very distinguished finance secretaries and people in the finance ministry who have been taking up that position. So it's part of that tradition. This is just one more example.
Ji, aur chalte hain agli khabar ki or. घरेलू शेयर बाजारों के सूचकांक आज लगभग स्थिर रहे। 30 शेयरों पर आधारित बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 2 अंक बढ़कर 81,510 अंकों पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 9 अंक की गिरावट के साथ 24,610 अंकों पर आ गया। बंबई शेयर बाजार के व्यापक बाजार ने अच्छा प्रदर्शन किया। मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों ही सूचकांकों में 0.3% की बढ़त दिखाई दी।
Benchmark domestic equity indices today ended on a flat note. The 30 share BSE Sensex rose marginally by 2 points to close at 81,510, while the NSE Nifty 50 was slightly down by 9 points to settle at 24,610. The broader market indices at the Bombay Stock Exchange ended in positive territory. The mid cap and the small cap indices added 0.3% each. In the Sensex index, 16 out of 30 companies logged gains. Among the top gainers, Bajaj Financial Services surged over 1.5%, HCL Tech climbed 1.3%, Infosys advanced over 1.2%. Conversely, in the top laggards, Bharati Airtel shed over 1.4%, Adani Ports fell over 1.3%, and Tech Mahindra dropped 0.9%. In the sectoral indices of the Bombay Stock Exchange, 10 out of the 20 sectors ended in the positive territory. Among the top gainers, Realty gained over 1%, Focused IT advanced over 0.8%, Information Technology added 0.7%. Conversely, in the top laggards, telecommunications declined over 1.1%, utilities shed over 0.9%, and power dipped over 0.5%. The overall market breadth of the Bombay Stock Exchange was positive, as shares of 2019 companies advanced and 1,945 declined, while 129 remained unchanged. At the National Stock Exchange, 124 companies hit their 52-week high, while 17 hit their 52-week low. Udayan, if we look at the past maybe 20-25 days, or let's say 20-25 sessions, you know, the last month's time was really of some upheaval. We saw wild fluctuations happening. Now every day, especially over the past 4 or 5 sessions, if we look at that, it has kind of plateaued. Not much of fluctuation, not much of that variance is seen. So can we kind of infer safely that now we are over that uncertainty period of the last month, which we witnessed? There was some we were kind of looking at a sinkhole kind of a thing. And also now with the holiday season approaching, especially in the Western countries, US markets and all, Do we see this kind of plateauing and kind of stabilizing more?
Yeah, let me start with the last bit. You're absolutely, you hit the nail on its head. Because typically, Nishit, during the last, in a calendar year, towards the end, the institutional investors, foreign institutional investors, they get into their, what is for us in during Diwali, although we do a lot of trading and investing, they become a little slack because their financial year is coming to an end. So it's, you're absolutely right. That's number one. Number two is that whole U.S. election and post-election trades and positions that were being taken, that seems to have sort of played, run its course. Now maybe the next couple of, if there are major events, if you ask me, of course there's some inflation data waiting to be announced, and that might move things a little bit here and there. But in terms of major things, if you ask me, I would say January 20th, when the new president gets sworn in, and markets would be watching as to whatever was spoken during election campaigns and the lead-up, are they getting followed? And you will see impact on all the markets, commodity markets and currency markets, every equity bond markets, everywhere. So it's already, you will see in the lead-up as well. And then, of course, for us, our budget becomes important. So from now till, say, about another 40 days, milestone kind of events, major events which will pull things in a particular direction, I'm not being able to foresee it. Little bit here and there, something happens in China, maybe some policy announcement here, there. So day-to-day movements, but something major, in terms of something, things that we can anticipate, those are the two events.
In fact, Udayan, you talked about some black swan events happening, if it happens, and then the market would kind of go anywhere. But if we look at the past 3-4 days, what's happening in the Middle East, Syria, of course, what's happening there, France as well. But the markets seem to have all over, not just India, all over, seem to have matured quite a bit, kind of discounting these things.
Well, because its headlines are getting absolutely swallowed by what's happening in the U.S., Nishit. Because the incoming administration, the announcements, because it's such a big economy. Mm. I mean, you put the that's number one, and you start putting the next quite a few of them together, even then they don't match up. So, for instance, the gap between us and China, which is number two, is like 6 times. And then U.S. is even larger. So, you know, what happens is anything that's going to happen by default will start influencing. So the headlines get captured by things that are getting announced. And it's not every 4 years in U.S. something like this happens. So one has to also concede that. And since everybody, the new administration is talking about major changes, you know, they're talking about whether it's, say, energy in terms of drilling, whether alternative assets, say crypto. So everywhere, if you're talking about things which are going to change everywhere in the largest economy and the largest financial system, then the whole world is going to start figuring out what exactly will it mean for them, the governments, the businesses, what have you. So it will take people a little while to internalize and then figure out what the approach is going to be.
लेकिन उदयन, आपको क्या लगता है कि अभी पिछले महीने तक हम जिस तरह की स्थिति देख रहे थे शेयर बाजार में, तो अब इस साल के लिए 2024 के लिए ये जो स्तर है ये बना रहेगा, या एक बार फिर से अभी जितना समय बचा है इस महीने में कुछ फिर से हमें कुछ उतार चढ़ाव दिखाई दे सकता है बाजार में?
देखिए, उतार चढ़ाव जैसे समुद्र में अब ज्वार भाटा आते रहते हैं, हाई टाइड लो टाइड, वो तो एक वो उसका प्रकृति है, इट्स नेचर. सो वो तो आपका हमेशा बनना रहता है. तो एक निवेशक जो है, जो इंडिविजुअल इस प्रोग्राम को सुनने वाले, उनकी उनको क्या देखना है, उनको तो ये तो गिवन है कि ऊपर नीचे होगा, वो फिक्स डिपॉजिट तो है नहीं. बट आपको जो चीज आपको ख्याल रखना है कि कम अवधि में बहुत नीचे गिरावट या उतार चढ़ाव अगर बहुत ज्यादा होता है, तब आपके फोकस में आता है, तब अनिश्चितता आ जाती है, तब आप घबरा के कुछ ना कर दें. चिंता वो उस वाली बात है. तो शॉर्ट पीरियड में बड़ी चेंज अगर होती है, किसी चीज में, करेंसी में होते हैं, वो दिक्कत वहां पे है। अगर आपको आपको धीरे धीरे उतार चढ़ाव हो रहा है पर आपको एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है, रुझान मालूम हो रहा है, वहां पे दिक्कत नहीं है और उसी उसी का ही फायदा उठाया जाता है। तो मुझे वो जैगेड बहुत वायलेंट चेंजेस
वो नहीं दिखाई देता,
वो नहीं दिखा, क्योंकि निषेध जी ने जो बोला है उसके चलते एक एक ठहराव सा आ ही जाता है वहां पे वेस्टर्न कंट्रीज में क्रिसमस के महीने समय के आसपास, जो कि साल में आके फिर वो एनर्जाइज दोबारा होता है।
बट उदयन, वी मस्ट नॉट फॉरगेट दैट अ स्ट्रेट लाइन ऑन द मॉनिटर इज ऑलवेज फेटल।
Yeah, that is one has to also remember. Sometimes we think something is a straight line, actually it isn't. So just in case somebody is investing in a debt in investment, there are risks to it as well. But the volatility up and down, which bothers people, that is not so noticeable. So if you are investing in bonds, not in a fixed deposit, you don't get to see it. But it's a marketable instrument. You will face the volatility. But nowhere near will it be comparable to equities. So, and even if you have invested for a longer period, then it's even better. So, these things one has to keep in mind.
जी, और चलते हैं रुपए का हल जान लेते हैं। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में आज अमरीकी डॉलर के मुकाबले रुपया 12 पैसे की गिरावट के साथ 84.85 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स अंतर दिवसीय कारोबार में 106.33% पर कारोबार कर रहा था। उदयन, रुपया जो गिरने का मतलब जो रफ्तार है वो थम नहीं रही है, क्या कारण है इतनी रुपए की कीमत में इतनी ज्यादा कमी?
देखिए, इसका सीधा सीधा जैसे मैं कह रहा था आपको कि अमरीका में यूएस में जो नीतियां निर्धारित हो रही हैं, जिनके बारे में बातचीत हो रही है, उसी से ही सारे मार्केट्स इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। ये अनदर एग्जांपल है, क्योंकि वहां पे ये नए जो राष्ट्रपति हैं वो ये कह रहे हैं कि वो टैरिफ लगाएंगे, वहां पे वो करेंगे, तो इसमें ये माना जा रहा है कि आपको वो चीजें करनी पड़ेंगी जिसमें आपको डॉलर खर्चना पड़ेगा। अगर डॉलर आपको खर्चना पड़ेगा मतलब आपको अमेरिका से नेट आपको ज्यादा खरीदना पड़ेगा, इसका मतलब डॉलर का डिमांड ज्यादा होगा। डॉलर का डिमांड अगर ज्यादा होगा वो ज्यादा वैल्यूएबल हो गया, फिर बाकी करेंसी वीक हो गई और यही आप देख रहे हैं। तो ये जो मैं आपको कह रहा हूं, ये 20 जनवरी को लोग देखने की कोशिश करेंगे कि क्या लोग सोच रहे थे वो एक्चुअली मटेरियलाइज कर रहे हैं कि नहीं।
And moving on to some other stories, the inflow into the systematic investment plans, SIPs, topped the 25,000 crore rupees mark for the second consecutive month and stood at 25,320 crore rupees in November this year, almost similar to the October figures of 25,323 crore rupees, according to the data from the Association for Mutual Funds in India, AMFI, released today. In November, the mutual fund industry's total assets under the management, that is AUM, increased to over 68 lakh crore rupees from over 67 lakh crore rupees in October, as per the data by the AMFI. Equity Linked Savings Scheme, ELSS, saw an increase in inflows rising to over 618 crore rupees in November from 362 crore rupees in October. The small cap funds experienced a 9% increase, rising to 4,112 crore rupees. Mid cap funds also saw a slight increase of 4.3%, climbing from 4,683 crore rupees in October to 4,883 crore rupees in November. Meanwhile, the equity mutual funds witnessed an inflow of 35,943 crore rupees in November, marking a drop of 14% on a monthly basis.
और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फसलों, मौसम और जल से संबंधित सूचनाएं एकत्र करने के लिए 2,817 करोड़ रुपए की लागत से डिजिटल कृषि मिशन की स्थापना को मंजूरी दी है। लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि से संबंधित डिजिटल सार्वजनिक ढांचे का राज्यों के साथ समन्वय बनाया जा रहा है, ताकि कृषि के बारे में महत्वपूर्ण सूचनाओं को किसानों तक पहुंचाने के लिए एक वृहद प्रणाली विकसित की जा सके।
And on to some other stories. India has witnessed a substantial rise in female labor force participation rate LFPR, particularly in rural areas from 2017-18 to 2022-23. A research paper on female labor force participation rates stated that rural female LFPR surged from 24.6% to 41.5%, while the urban LFPR rose modestly from 20.4% to 25.4% from 2017-18 to 2022-23. In rural areas, significant increases are seen in states like Jharkhand, while 233% growth, and Bihar with six-fold growth. Northeastern states have also shown remarkable growth.
और चलते हैं एशिया के अन्य बाजारों का हाल भी जान लेते हैं. एशिया के पांच प्रमुख शेयर बाजारों में से चार में आज बढ़त दर्ज की गई. दक्षिण कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में 2.3%, चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.59% और जापान के निकेई में 0.5% से अधिक की तेजी दिखाई दी. सिंगापुर के स्टेट्स टाइम्स इंडेक्स में भी लगभग 0.5% की बढ़त देखी गई. इस बीच हांगकांग शेयर बाजार का हैंगसेंग इंडेक्स 0.5% से अधिक गिरा. यूरोप के प्रमुख शेयर बाजारों में आज मिला जुला रुख रहा. अंतिम समाचार मिलने तक लंदन का फुटसी और फ्रांस का कैक दोनों ही 0.5% से अधिक गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे, जबकि जर्मनी के डैक्स में 0.09% की मामूली बढ़त चल रही थी.
And on to the US markets. US stocks ended lower yesterday, weighed down by technology stocks. The Nasdaq composite and the S&P 500 both slipped over 0.6% each, and the Dow Jones Industrial Average declined over 0.5%. And in some other news, India's leather and footwear industry aims to expand its presence in the UAE market as it makes a strong showing at the Deflex 2024, with 43 manufacturing exporters participating in the region's largest leather products and footwear exhibition currently underway at Festival Arena, Dubai Festival City. B.G. Krishnan, Consul Trade and Commerce at the Consulate General of India in Dubai, inaugurated the Indian Pavilion and emphasized the Middle East market's potential, noting the presence of over 4 million Indians in the United Arab Emirates. And on to crude oil prices slipped today as concerns eased about the uncertainty following the fall of the Syrian President Bashar al-Assad. Brent crude was trading at 0.39% down at $71.86 per barrel, and the WTI crude had lost 0.42% to trade at $68.08 per barrel, according to the latest reports. Very briefly, Udayan, with lots of uncertainties and turmoil happening in the Middle East, Syria, we saw Ukraine, of course, happening, and then Iran, Israel, and all the things happening all over the place in the Middle East or the West Asia. Where do you see oil going from here?
Well, Nishit, I don't expect it to shoot up, simply because China being a very important source of demand, that particular piece of the puzzle has not got sorted out. So till things are not looking very buoyant in China, you can expect the oil prices to remain at this kind of level, maybe a little more. And let's not forget that once the new administration, again the US administration, comes in, they have talked about allowing more pumping, more shale guys coming in. Mm-hmm. They're private players, so they'll be influenced by market dynamics. Mm. But there will be an effort by the administration to get more supply in. So more supply comes in, the prices remain in control.
Aur Sarafa Bazaar mein sona aaj बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था. अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोना 0.53% बढ़कर 77,980 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था. वहीं चांदी 0.13% बढ़कर 95,130 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर थी. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतिम समाचार मिलने तक फरवरी 2025 में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का वायदा मूल्य 0.49% बढ़कर 77,866 रुपये प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था. वहीं मार्च 2025 में आपूर्ति की जाने वाली चांदी का वायदा मूल्य 0.04% गिरकर 95,161 रुपये प्रति किलोग्राम पर चल रहा था. और उदयन जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने और प्रमुख खबरों पर चर्चा करने के लिए आपका धन्यवाद.
धन्यवाद.
और अंत में हेडलाइंस के लिए एक बार फिर निश्चित कुमार.
थैंक यू सो वेरी मच Udayan for having joined in. And the headlines: India a shining example before the world by implementing policies for poverty alleviation, hunger eradication, and offering equal opportunities to youth, says President Draupadi Murmu. Outgoing RBI Governor Shaktikant Das highlights challenges that lie before RBI, including restoration of inflation control, adapting to the changing global order and addressing cybersecurity risks. Domestic benchmark indices end on flat note. Sensex settles at 81,510, Nifty closes at 24,610, and global crude oil prices slip. Brent crude trades at $71.86 per barrel. That's it in this edition of Market Mantra. From all of us here, goodbye.